हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 294 आदित्य और सुनैना से मिलकर घर वापस आने के बाद अक्षत ने अपने कपड़े बदले और अपने पुराने कपड़े अलमारी में रखने लगा। तभी उसने देखा कि नैना पहले ही कपड़े बदल चुकी थी और शीशे के सामने बैठकर अपनी रात्रिचर्या स्किन केयर कर रही थी। अक्षत उसके पीछे बने बिस्तर पर जा बैठ गया। इससे नैना को आईने में अब अपने साथ साथ अक्षत का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। नैना ने एक नज़र उठाकर अक्षत की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अक्षत ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो नीचे फर्श की ओर देखता हुआ कुछ सोच रहा था। नैना ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, सुनैना और आदित्य जीजू से मिलकर बहुत अच्छा लगा ना, आज मेरा तो पूरा मूड फ्रेश हो गया। नहीं तो इतने दिनों से बस घर से एक्टिंग सेट और फिर वापस घर, और कहीं आना जाना ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा हुआ आज तुमने भी समय निकाला मेरे साथ, थैंक यू सो मच अक्षत। अक्षत अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया कि नैना ने क्या कहा। लेकिन नैना की आवाज़ उसके कानों तक पहुँची, इसलिए उसने पूछा, हाँ कुछ कह रही हो क्या नैना तुम? नैना ने अपने हाथ पर बॉडी लोशन लगाते हुए उठकर खड़ी हुई और अक्षत की ओर बढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा मैंने तो, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, कोई बात है क्या, कोई प्रॉब्लम? अक्षत ने उसकी बात का जवाब देते हुए पूछा, हाँ मेरा मतलब है नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, तुम सच में रितेंज के बारे में इतना कुछ सर्च करती थी? जितना सुनैना को मेरे बारे में पता है तुम्हें वो सब रितेश के बारे में पता है ना, ऐसा क्या अच्छा लगता है तुम्हें उसमें? नैना ने लापरवाही से कहा और वहाँ से अपने स्थान पर जाने लगी। अरे तुम अभी तक उसी बात पर अटके हुए हो क्या? और वो तो बस एक क्रश है, मतलब फेवरेट एक्टर, वो तो सभी का होता है। देखो जैसे सुनैना के तुम हो वैसे ही मेरे रितेश सर हैं, तो तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है यार? तुम्हें तो पहले ही इस बारे में पता था ना, इतना क्यों सोच रहे हो इस बारे में? लेकिन अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अच्छा क्यों नहीं होगी मुझे प्रॉब्लम, आखिर तुम ही तो मेरी गर्लफ्रेंड हो यार, एंड वी लव ईच अदर, तो फिर किसे ये सुनकर अच्छा लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का क्रश कोई और है? और वैसे भी ये पहले की बात नहीं, तुम तो अभी भी उसे पसंद करती हो, नाम बताओ उसमें ऐसा क्या है? नैना ने मुड़कर अपना चेहरा उसकी ओर किया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ओहो मिस्टर बॉयफ्रेंड, इतनी ज्यादा जलन, क्या बात है, वैसे आई लाइक माई पोजेसिव बॉयफ्रेंड। अरे यार मजाक नहीं, सच में बताओ ना, अक्षत ने मुंह बनाते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, बस पर्सनालिटी, एक्टिंग स्किल या फिर उनके लुक्स, कुछ भी पसंद आ सकता है, वो भी उनकी मूवी देखकर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर लड़की का कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेस क्रश तो होता ही है। नैना ने फिर से उसी तरह लापरवाही से उसकी बात का जवाब दिया, क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अक्षत क्यों उसी बात पर अटका हुआ है। अच्छा ठीक है, बट मैं भी तो एक्टर था, मुझे नहीं पसंद कर सकती थी क्या तुम? अक्षत ने शिकायत करते हुए कहा। तो उसकी इस बात पर नैना हंसने लगी और उसी तरह हंसते हुए बोली, सबसे पहले तो शीशे में शक्ल देखो अपनी, इस तरह से जलते हुए कितने सुपर क्यूट लग रहे हो यार, और उसके अलावा सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती ना, देखो सुनैना भी तो तुम्हें पसंद करती है और कितना एक्साइटेड होकर वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रही थी, अगर जीजू भी तुम्हारी तरह एक्ट करते तो। नैना की ये बात सुनकर अक्षत ने कुछ सोचते हुए धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, इसका मतलब सुनैना की पसंद ज्यादा अच्छी है, देखो आई मीन लुक एट मी, कोई कंपैरिजन है क्या मेरा रितेश से? कोई कंपैरिजन नहीं है बेबी, माय बॉयफ्रेंड इज द बेस्ट, नैना ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। तो अक्षत ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर नैना मुस्कुराते हुए आकर बिस्तर पर लेट गई और फिर अक्षत भी उसके साथ ही लेट गया गले मिलकर, क्योंकि अगले दिन सुबह उन दोनों की ही शिफ्ट थी, उन्हें अपनी अपनी फिल्म की शूट के लिए जाना था। सुनैना और आदित्य दोनों ही घर से ही काम कर रहे थे, क्योंकि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होता तो दोनों ही ऑफिस जाना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी उन दोनों में से कोई एक चला जाता है और रेगुलर तो ज़्यादातर सुनैना ही ऑफिस जाती थी। आदित्य ने तो अब जैसे ऑफिस और बाहर आने जाने से ज़्यादा छुट्टी ले रखी थी, और सुनैना जब तक उसे ज़बरदस्ती कहीं लेकर नहीं जाती वो नहीं जाता था। उसकी फाइनल रिपोर्ट भी काफी अच्छी आई थी और डॉक्टर ने बताया था कि वो लगभग स्वस्थ हो रहा है। इस बात से सुनैना खुश थी कि वो अपनी दवाइयां समय पर लेता है, खाना खाता है और पहले से काफी ज्यादा सामान्य व्यवहार करता है। इसके अलावा वो शराब भी नहीं पीता था, क्योंकि अब तक उन दोनों के बीच कोई ऐसी स्थिति भी नहीं आई थी। सुनैना इस बात का खास ख्याल रखती थी और उसने अपने हिसाब से घर में रखी हुई सारी शराब फेंक दी थी। इसलिए रवि सारी जानकारी लेकर घर पर आया और इस वक्त उनके घर में बने स्टडी रूम में ही उन तीनों की मीटिंग चल रही थी। गीता वहाँ पर हमेशा की तरह चाय, कॉफ़ी और नाश्ता रखकर चली जाती थी और स्वीटी अगर घर पर होती भी है तो वो बस अपने कमरे में या फिर नीचे हॉल में ही रहती थी। वो स्टडी रूम में जाना पसंद नहीं करती थी, खासकर पिछली बार से, जब से उसने आदित्य और सुनैना को एक साथ वहाँ पर देखा था। रवि ने बोलना शुरू किया, सर वो मनस्वी राठौर, उसने सीधे आपके साथ मीटिंग करने के लिए हाँ बोल दिया है, लेकिन उसने एक हफ्ते का समय मांगा है, उसके बाद वो आपसे मिलेगी। रवि की बात सुनते ही सुनैना ने आदित्य से सवाल किया, क्या आदित्य, तुमने उसे मिलने का प्रस्ताव भेजा? लेकिन क्यों? अनय तुम्हें इस बारे में वार्निंग भी देकर गया है कि तुम्हें उस लड़की से बचकर रहना चाहिए, फिर भी तुम उससे सामने से मिलना चाहते हो? आदित्य अपनी पूरी बात समझाते हुए बोला, अरे नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं मिलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने बस ऐसे ही प्रस्ताव भेजा था उसका रिएक्शन देखने के लिए, और मुझे पूरा यकीन था कि अगर वो मेरा बुरा चाहती है या फिर पीठ पीछे कुछ प्लान कर रही है तो फिर वो मुझे सामने से मिलने कभी नहीं आएगी और सीधे ही मना कर देगी। इससे मेरा शक यकीन में बदल जाता, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है उस लड़की के दिमाग में। जरूर वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है, इसलिए उसने मीटिंग के लिए सीधे मना नहीं किया बल्कि समय मांगा है। सुनैना ने सीधे ही अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, एक हफ्ते बाद जब वो मिलने के लिए बोले तब तुम मना कर देना, क्योंकि जब वो मना कर सकती है तो हम भी बिजी होने का बहाना बनाकर या फिर कुछ भी बोलकर मना कर सकते हैं, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सुनैना की बात सुनकर रवि एकदम से बोला, अरे लेकिन क्यों, आई मीन अब हमने ही बोला है तो एक बार तो हमें उनसे मिल लेना चाहिए सर, इट्स जस्ट माई सजेशन, बाकी जैसा आप लोग फाइनल करें। आदित्य उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन इस बारे में सोचते हुए अभी वो एकदम चुप था। वो लोग इस बात को लेकर किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंच पाते तभी उन्हें नीचे से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई दीं, और वो आवाज़ें जानी पहचानी तो थीं लेकिन रोज़ सुनाई नहीं देती थीं। इसका मतलब कोई तो आया था वहाँ पर, और ये बात समझ में आते ही उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और रवि को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर आदित्य और सुनैना दोनों ही स्टडी रूम से बाहर निकल आए। रवि जब तक अपना बचा हुआ काम खत्म करने लगा और सुनैना आगे आते हुए पहले सीढ़ियों की ओर आ गई, जबकि आदित्य उसके पीछे ही चल रहा था। उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त कौन आया होगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो कोई भी इस वक्त घर नहीं आने वाला था।
कौन है गीता दी? सुनैना सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। नीचे से स्वीटी की आवाज़ आई, मम्मी पापा आए हैं, भाभी और भैया भी हैं साथ में। स्वीटी की माँ ने ज़बरदस्ती दाल दिखाते हुए कहा, अरे हम हैं बहू, इतने दिनों से स्वीटी से भी मिलने का मन हो रहा था और तुम दोनों से भी, आओ आओ तुम दोनों भी नीचे ही आ जाओ, तुम्हारे चचा जी के तो पैरों में दर्द है, ऊपर नहीं आ पाएंगे। उनकी आवाज़ सुनकर आदित्य धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए बोला, लगता है अब ये एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा, मेरा मतलब है कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। आदित्य के इस बात पर सुनैना ने पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखा तो फिर आदित्य चुप हो गया और उसने आगे कुछ भी नहीं बोला और वो चुपचाप नीचे उतरकर आया। क्या बात है चचा जी, चाची जी, आज आप लोग यहाँ पर, ज़रूर कुछ काम होगा, पैसे चाहिए क्या? आदित्य एकदम ही अपने अंदाज में बोला, जैसे कि वो हमेशा ही अपने रिश्तेदारों से बात करता है, क्योंकि उन लोगों को वो कुछ खास पसंद नहीं करता था और जिस तरह की मानसिक स्थिति से वो इतने सालों में गुजरा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यही लोग थे जो उसके आसपास रहकर हमेशा उसे इस बात का एहसास कराते थे कि वो कितना असहाय और अकेला है। चचा चाची के बीच बैठा हुआ उनका बेटा विशाल उठकर खड़ा होते हुए बोला, भैया मेरे मम्मी पापा कोई भिखारी नहीं है जो आप उन्हें इस तरह से बोल रहे हैं। आदित्य भी एकदम ही सीधा जवाब देते हुए कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम तो खुद ही अपना परिचय दे रहे हो विशाल, इसलिए बैठ जाओ, मेरे सामने ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, कौन कितना क्या है मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ। आदित्य की ऐसी ताने भरी बातें सुनकर विशाल इधर उधर अपने मम्मी पापा की ओर देखने लगा, लेकिन उन दोनों की ओर से उसे मदद की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई। लेकिन स्वीटी उसे समझाती हुई बोली, भैया क्या कर रहे हो आप, चुप नहीं रह सकते क्या? और आदि भैया को तो हम सब जानते हैं ना, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। आदित्य ने फिर से मुस्कुराकर उसे ताना मारते हुए कहा, देखो स्वीटी, तुमसे ज्यादा समझदार है विशाल, इसीलिए वो तरक्की पर है और तुम हो कि अभी भी मम्मी पापा के टुकड़ों पर ही पल रहे हो ना। सुनैना उसका एक हाथ पकड़कर उसकी ओर देखते हुए बोली, आदित्य प्लीज रहने दो, कोई तमाशा मत करो अभी। उसकी बात सुनकर चचा जी ने तिरछी निगाहों से सुनैना की ओर देखते हुए कहा, हाँ बहू, कुछ ज्यादा ही समझदार हो तुम तो, शायद इसीलिए इतने कम समय में तुमने सब कुछ अपने नाम करवा लिया, नहीं तो हमें तो हमारा हिस्सा भी नहीं मिल रहा। कौन सा हिस्सा, मेरी कंपनी में आपका कोई भी हिस्सा नहीं है। इस बार सुनैना ही उनकी बात का जवाब देती हुई बोली तो चचा चाची दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य ने अपने दोनों हाथ सामने की ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बहुत ही गर्व भरी नजरों से सुनैना की ओर देखा। इस बार चाची जी ने सुनैना को उंगली दिखाते हुए कहा, देखा कितनी लालची है ये लड़की, मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था, शादी के बाद से ही, आखिर इतने अमीर घर में शादी हुई है इस लड़की की, तो पैसों के पीछे तो होगी ही ना ये, लेकिन ये मत भूलना लड़की कि हम तुम्हें अपना हिस्सा तो नहीं हड़पने देंगे। इतना बोलते हुए चाची जी दो कदम आगे भी आईं, लेकिन वो सुनैना तक पहुंच पाती उससे पहले ही आदित्य उन दोनों के बीच में आ गया और बोला, भूलना मत चाची जी, मेरे घर में खड़ी हैं आप और मेरी वाइफ के साथ साथ सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन से बात कर रही हैं, इसलिए थोड़ा तमीज से, पता है मुझे आप लोगों में है नहीं तमीज, लेकिन फिर भी कोशिश करिए थोड़ी। आदित्य और सुनैना दोनों का ही ऐसा रवैया देखकर चचा और चाची जी के तो होश उड़ गए, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कहें और कैसे। साथ ही जिस काम के लिए वो दोनों यहाँ पर आए हैं वो काम तो अब उन्हें दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। क्रमशः